देवियों, सज्जनों, स्वामी दयानंद जी द्वारा लिखित आर्योदेश्य रत्नमाला जो बुक है छोटी सी, जिसमें हमारे धर्म से रिलेटेड अलग अलग चीजों को का डिफिनेशन है, सार है, उस प्रसंग में हम बहुत सारी चीजों पर चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली बार हम सुन रहे थे देवता, असुर, मनुष्य कौन होते हैं, ये कोई मिथिकल, कोई स्वर्ग में रहने वाला देवता, कोई पाताल में रहने वाला राक्षस नहीं। इंसान अपने गुणों से देवता कहलाते हैं, अपने गुणों से राक्षस कहलाते हैं, अपने गुणों से इंसान कहलाते हैं। जैसे हमने चर्चा की थी, अगर आप पुराण पढ़ते हैं, पुराणों की कहानियां जानते हैं और कभी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, एक ही फैमिली में पिता मनुष्य है, विश्रवा ऋषि है, उसका एक बेटा कुबेर देवता है, एक बेटा रावण राक्षस है, कुंभकर्ण राक्षस है, एक बेटा विभीषण मनुष्य है, तो स्पष्ट है कि मां इंसान है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि देवता या मनुष्य या राक्षस अलग अलग स्पीशीज होते हैं, इंसान के अलग अलग कैटेगरी है। तो जो राक्षस, मनुष्य या देवता के रूप में जाने जाते हैं, मैंने ये भी सुना कि इंसानों में भी जो हमारे माता पिता आचार्य, जिनका हमारे लाइफ में कुछ कोई कंट्रीब्यूशन है, पति अपने पत्नी के लिए और पत्नी अपनी पति के लिए भी देव और देवता होते हैं। एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली देखना, रेस्पेक्ट करना, ये देवता है। आज का दो तीन विषय है। पहला है शिक्षा किसको कहते हैं, व्हाट इज एजुकेशन। ये जो विचार है, दोबारा मैं आपको बताऊं, ये कोई स्वामी जी का विचार, वो खुद कहते हैं कोई मेरा विचार नहीं, ये ओवरऑल जो भारतीय संस्कृति है, जो इंडियन नॉलेज है, उस नॉलेज सिस्टम का जो जिस्ट है, जो निचोड़ है, वो बताना चाहते हैं। शिक्षा या एजुकेशन वो है विच इज कंड्यूसिव टू लर्निंग, सीखना कुछ ना कुछ विद्या, सिविलिटी जो इंसान को ज्ञानी बनाए, सिविलाइज्ड बनाए, सभ्य बनाए, शिष्ट बनाए, जो उसको धार्मिक बनाए। धार्मिक का मतलब जिसका व्यवहार अच्छे हो, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए अच्छे व्यवहार हो, एंड सेंस कंट्रोल, और जो अपने आप को, अपने इंद्रियों को, मन को रेगुलेट करना सीख पाए। ये विद्या के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा मिलनी चाहिए, या उसी को शिक्षा कहते हैं जिससे लोगों को ये चीजें मिलती है। और जो लोगों को इग्नोरेंस से और जो एविल हैबिट से, सुपरस्टिशन से, गंदे व्यवहार है, उन सब से लोगों को दूर करें। बताने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जनरली जो हम शिक्षा देखते हैं आजकल, आजकल का अर्थ नहीं कि आज या कल, सैकड़ों सालों से जिस एजुकेशन सिस्टम को हम देखते हैं दुनिया भर में, उसमें सिर्फ हम प्रोफेशनल तैयार करने के लिए जो ट्रेनिंग है उसे ही एजुकेशन मानते हैं। मतलब एक व्यक्ति को हमें लॉयर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना है, मैनेजर बनाना है, क्लर्क बनाना है, पीएन बनाना है, चपरासी बनाना है, मैकेनिक बनाना है, तो उसके लिए जो सिस्टम है उसको हम एजुकेशन मानते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं है, ट्रेनिंग जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह सिर्फ प्रोफेशनली पैदा करता है, उसका रिजल्ट होता है कि लोगों में जो एक मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए टू बी ए ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स बट बाय नेचर और बाय बिहेवियर वी आर ह्यूमन बीइंग, ये डाउटफुल रहता है हमेशा। हमारा व्यवहार कभी कभी जानवरों जैसा होता है। हमें कोई जानवर इसीलिए नहीं कहता है कि हमारे दो पैर और दो हाथ है, हम सोचते हैं, बोलते हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, तो हमें कोई जानवर नहीं कहता है। पर बहुत सारे लोगों का व्यवहार जानवर से भी कोई काम नहीं है। उसका कारण है कि कोई पैदा होते ही तो सब कुछ नहीं जानता, उसको सिखाने की जरूरत पड़ती है। जब आपका एजुकेशनल सिस्टम ये नहीं सिखाता है और माँ बाप घर में भी नहीं सिखाते हैं, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है बच्चे को सीखने के लिए, तो लोग फिर मशीन बन जाते हैं। उनका बिहेवियर भी रोबोट जैसा होता है। अपने को आगे बढ़ाना, सामने आने वाले कोई भी आए कुचल जाए, मारे जाए, हर्ट हो, दुखी हो, परेशानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बोलने के तरीके, हमारे व्यवहार, हमारे एटीट्यूड, लोगों के साथ व्यवहार, वो नहीं सुधरता, क्योंकि हमें कोई ऐसी शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षा हमेशा होलिस्टिक होनी चाहिए, जो हमारा हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ करे, मानसिक रूप से स्वस्थ करे। मानसिक रूप से स्वस्थ का मतलब होता है यही सब चीजें, कि हमारे अंदर वो राइटसनेस आए, सिबिलिटी आए, हमारे अंदर सेंस को, अपने सेंसेस को रेगुलेट करने की क्षमता आए, ये जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ बने और आखिर में व्यक्ति को अपने को समझने के लिए, अपने अंदर को समझने के लिए कोशिश करने के लिए रास्ता मिले, जिसे आप आध्यात्मिकता कहते हो, स्पिरिचुअलिटी कहते हो, सर्चिंग योर सेल्फ कहते हो, वो रास्ता एजुकेशन से मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो वो अधूरी शिक्षा है, वो सिर्फ ट्रेनिंग है प्रोफेशनल तैयार करने के लिए, एजुकेशन तो नहीं है। एजुकेशन का एक दूसरा साइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल भी हम कम देखते हैं, वो है कि लोगों का इग्नोरेंस कम होना चाहिए और एविल हैबिट्स बंद होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे लोग भी वही करें जो अनपढ़ आदमी करता है, तो फिर लगता है कौन सा एजुकेशन है, सिवाय कुछ पैसा कमाने वाले मशीन बनाने के अलावा और क्या एजुकेशन है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति की भाषा भी वही है, भाषा का अर्थ मैं नहीं कहता हूं कि अब इंग्लिश बोलते हैं कि हिंदी बोलते हैं कि फ्रेंच बोलते हैं, अब इंग्लिश में भी गालियां देते हैं, हिंदी में भी गालियां देते हैं, इंग्लिश में भी शिष्ट भाषा बोलते हैं, हिंदी में भी शिष्ट भाषा बोलते हैं। भाषा में अगर सुधार नहीं हुआ तो फायदा कुछ नहीं। अगर मेरे चरित्र में कोई सुधार नहीं हुआ, मेरी समझदारी में कोई सुधार नहीं हुआ, तो फिर एजुकेशन का क्या मतलब है। अगर मूर्ख और पढ़े लिखे लोग दोनों की एटीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, तो वो कोई शिक्षा नहीं होती है, क्योंकि हमारी शिक्षा सिर्फ प्रोफेशनल पैदा करती है। उसका रिजल्ट है कि बड़े बड़े प्रोफेसर, बहुत एजुकेटेड लोग भी, जो अपने आप को बहुत समाज के इंटेलेक्चुअल मानते हैं, वो भी हजारों सुपरस्टिशन से घिरे हुए होते हैं, लाइफ में हजारों ऐसी चीजें करते हैं जो अपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज करे भी उनको भी लगेगा ये स्टुपिडिटी है, पर करते हैं। उनका एजुकेशन सामने नहीं आता है उनको एजुकेट करने के लिए, इट्स नॉट गुड बट इट्स गुड। हमारे शास्त्रों में कहा विद्या कौन है, या विद्या या विमुक्तये, जो आपको फ्री ना करा सके, किससे, इग्नोरेंस से, प्रॉब्लम से, ट्रबल से, इनजस्टिस से, अगर आपको फ्री नहीं करा पाए तो किस बात की विद्या है। विद्या वही है जो आपको फ्री कराए, फ्रीडम दिलाए, किससे, जस्टिस इनजस्टिस से। अनपढ़ आदमी को सबसे ज्यादा अन्याय सहना पड़ता है, पढ़े लिखे होकर भी अगर आपको भोगना पड़ता है तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं है। अनपढ़ आदमी सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस काम करता है, क्योंकि उसको पता नहीं क्या सही है गलत है, जो दिखता है करता है। पढ़े लिखे वो पर भी वही करता है तो पढ़ने लिखने का क्या मतलब होता है। अनपढ़ आदमी दुखी होता है क्योंकि उसको कुछ पता नहीं होता है, अज्ञानी आदमी। अनपढ़ आदमी सबसे ज्यादा डरता है, क्यों डरता है? जिस चीज के बारे में आपको कुछ पता ना हो उस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा डर रहेगा। जब लोग बहुत अनपढ़ थे जिस सोसाइटी में 2000 साल पहले 5000 साल पहले जब लोगों में शिक्षा नहीं थी, दुनिया भर की बात करें पूरे प्लैनेट में एजुकेशन जहां जितना कम है आप वहां देखेंगे बिजली चमके तो भी लगता है कि देवी मां नाराज हो गई। लोगों को बीमारी होती थी, हैजा होती थी या कोई दूसरी बीमारी होती थी जी, देवी मां नाराज हो गई। बारिश हो गई कि देवता खुश हो गए। अब ये जैसे जैसे लोगों में पढ़ना लिखने का बना, लोग शिक्षित बने, उनको लगा ये सब तो पार्ट ऑफ नेचर है, उसके साइंटिफिक रीजन है, थंडरस्टॉर्म क्यों होता है, लाइटनिंग क्यों होता है, भूकंप क्यों होता है, उसके अपने रीजनिंग है, कोई भगवान नाराज होकर थोड़े करता है। पर आज भी जहां जहां अशिक्षित लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। पर मजेदार बात है, अशिक्षित लोगों के कंपैरिजन पढ़े लिखे लोग कम नहीं मानते। अब सवाल है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा सिवाय पैसा कमाने के रास्ता बताने का। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं पढ़ना लिखना वही है, एजुकेशन वही है, या एजुकेटेड आदमी वही है जिसके अंदर सिविलिटी आई, जिसके सेंसेस रेगुलेटेड हो सकते हैं, जिसका बिहेवियर मोरलिटी के साथ रहता हो, जो इग्नोरेंट चीजों को से दूर रहता हो, जो ऐसे काम जिसके करने के लिए सिर्फ आपको एक ही चीज चाहिए कि आपको इग्नोरेंट होना पड़ेगा, वो नहीं हो तो वो पढ़ा लिखा है, नहीं तो बाकी आप कितने बहुत पैसे वाले हैं, बहुत डिग्री वाले हैं, बहुत बड़े पोस्ट में, कोई मतलब नहीं होता है। आपकी अनपढ़पन तो अनपढ़पन में ही रहेगा। अगला स्वामी जी का विषय है तीर्थ। तीर्थ इसको अफोर्ड कहें या पिलिग्रिमेज, प्लेसेस ऑफ पिलिग्रिमेज, जैसे भारत में आप जाते हैं तो जाते हैं काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, धाम अलग अलग, पुरी, तिरुपति, रामेश्वरम, कुरुक्षेत्र अलग अलग है, गंगा, गंगा के किनारे कोई नर्मदा, अलग अलग जगह पर आप जाते हैं, नासिक, अलग अलग लोगों का अलग अलग तीर्थ है। किसी के जैसे मुस्लिम लोगों जाते हैं मक्का मदीना, कैथोलिकों के लिए वेटिकन सिटी या जो उनके जो बड़े बड़े सेंट जहां पैदा हुए या मरे, जिनको जहां उनकी कब्रिस्तान है वो भी तीर्थ बन जाता है। खैर वो तो अलग बात है, उनके अपने गुरु लोग क्या उनको समझाते हैं, उनके स्क्रिप्चर में क्या लिखा है वो मानते हैं, हम उनका कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने बारे में कहेंगे। स्वामी जी लिखते हैं तीर्थ इज दैट विच हेल्प्स इन क्रॉसिंग द ओशियन ऑफ मिजरी। तीर्थ शब्द का जो लिटरेरी मीनिंग है, जो पार करा देता हो, पार समझते हैं टू क्रॉस। अब जिससे भी आप दुखों से परेशानियों से दूर हट जाए वो आपके लिए तीर्थ है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड एक्शंस सच एज ट्रूथफुलनेस, लर्निंग, विद्या, कंपनी ऑफ वाइज एंड गुड पीपल, सत्संग, द प्रैक्टिस ऑफ योगा सच एज यम नियम एक्सेट्रा, लीडिंग ए लाइफ ऑफ एक्टिविटी, पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ समझते, मेहनत करना, प्रमुलगेशन ऑफ एजुकेशन, विद्या को फैलाना। जिन कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में दुख परेशानियां कम हो, हम उसको पार कर जाए, वो तीर्थ है। प्राचीन काल में जिनको अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, आज जिन चीजों, जिन जगहों को आप तीर्थ मानते हैं, काशी, बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां जहां भी, पुरी, जहां जहां कुरुक्षेत्र, आप अगर उसकी हिस्ट्री देखें, ये सब स्थान एक जमाने में विद्या क्षेत्र थे। विद्या क्षेत्र मतलब एजुकेशनल हब हुआ करते थे। पहले जमाने में अगर कोई घूम फिर के काशी पहुंच जाए, घूमने ही चला जाए दो चार दिन के लिए और वापस आए कि मैं काशी से वापस आया हूं, तो गांव में उसको बड़े रिस्पेक्ट मिलता था। क्यों पता है? मैं आजकल तो आप इसीलिए रिस्पेक्ट देंगे, गंगा पानी लेकर आया होगा, गंगा में नहा कर आया होगा। पर पहले क्यों रिस्पेक्ट देते थे पता है? ये कुछ सीख कर आया होगा, काशी से आया है, मतलब कुछ पढ़ा लिखा जरूर होगा, चार दिन भी रहा होगा तब भी कुछ तो ज्ञान लेकर आया होगा। और अगर काशी में पढ़ के आप आए हो तो आपकी कंपैरिजन में तो कोई विद्वान हो ही नहीं सकता। दुनिया के अलग अलग देशों में शहरों का अपना सम्मान है, जैसे यूएसए में आपकी बॉस्टन है, और भी जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, पुरानी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड है, येले है, जो सैकड़ों सालों से, वो पूरी की पूरी जो सब सिटी है, छोटी सिटी है। आप वहां हार्वर्ड में क्या करते हैं मायने नहीं रखता, आप वहां से आए हो तो पूरे दुनिया, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरे दुनिया भर में भाई हार्वर्ड से आया है, मतलब कुछ हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। कि हार्वर्ड क्या है? तीर्थ है। सारे प्राचीन तीर्थ क्षेत्र आपके पढ़ने लिखने ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े बड़े साधु, सन्यासी, संत, ज्ञानी, विद्वान वहां रहते थे, आज भी रहते हैं। लोग उनके पास जाते थे ज्ञान के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, इसीलिए वो तीर्थ बने। कुछ लेकर आते थे, जिस तरह वो जाते थे, जिस स्टेज में जाते थे, जब वापस आते थे बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड होकर के आते थे। अनपढ़ आदमी जाता था, पढ़ा लिखा होकर आता था। दुखी आदमी जाता था, सुखी होकर आ जाता, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होकर जाता था। इसीलिए वो तीर्थ कहलाते थे, क्योंकि वहां जाने पर आप दुखों से, कष्टों से तैर जाते थे। अब क्या हुआ? अब है कि तीर्थ जहां जाने से पुण्य मिलता है ना, नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब तीर्थ हुए, पहले भी थे तीर्थ, पर आज जिस सेंस में आप इसको तीर्थ मानते हो, पहले ऐसा नहीं था। नदी के संगम पर, पहाड़ों की छोटी, वो पहाड़ों, पहाड़ी एरियाओं में जहां शांति रहती थी, वातावरण ज्यादा शुद्ध रहता था, एटमोस्फियर ज्यादा प्योर रहता था, ज्यादातर ज्ञानी लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, किताब लिखने वाले लोग, साधना करने वाले लोग, योग करने वाले लोग ऐसी जगह पर चले जाते थे, जहां उनको ज्यादा खाने पीने, रहने के लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, आसानी से खाना पानी मिल जाए, फल फ्रूट, ये अनाज पानी, ये सब आसानी से मिल जाए और एकांत हो वो अपनी साधना में, पढ़ाई में, लिखाई में, जो भी जिस तरह का व्यक्ति है, आत्मज्ञान में, शरीर ज्ञान में, जिस ज्ञान में भी उसको जाना है, वो टाइम बिताते थे। अब धीरे धीरे लोगों के लिए वो सब तीर्थ बना, दुख निवृत्ति का साध मार्ग स्थान बना। लोग जाते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे, खुद सीखते थे, वो राजा महाराजाओं की समस्या होती थी, चल पड़ते थे घोड़े में बैठ के, रथ के बैठ पर अपने गुरुओं के पास पहुंच गए काशी हरिद्वार। वहां रहते थे 15 दिन महीनों। अभी आजकल सब जाते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया, उसमें तो क्या कहते हैं जो नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, 15 दिन 20 दिन बिताते हैं, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, वहां आपको खान पान रहन सहन कंट्रोल किया जाता है, आपको योगा सिखाया जाता है, मेडिटेशन कराया जाता है, आपके खान पान को बदलवाया जाता है। बहुत सारे आश्रमों में शिविर लगता है, कैंप लगता है, 10 दिन का 15 दिन का 20 दिन का। यहां से भी बहुत लोग जाते हैं, अटेंड करते हैं, ट्रांसफॉर्म होकर के आते हैं, फिजिकली भी मेंटली भी स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं। दैट इज कॉल्ड तीर्थ। अब क्योंकि हमें अब हमारी एटीट्यूड भी बदल गया, हमें जो दुखों से छुटकारा दिलाने वाले लोग उनके एटीट्यूड भी बदल गया, अब हम सब शॉर्टकट में भरोसा करने लगे। अब हमारे लिए ये दुखों की निवृत्ति के लिए कुछ सीखना, कुछ पाना, कुछ प्रैक्टिस करना, ये सेकेंडरी होता गया। शॉर्टकट चाहिए क्या? देखो भाई, मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, शराब खूब पीऊंगा, मांस पूरा खाऊंगा, रात भर में नाचूंगा, दिन बस मुझे हेल्दी होना है, क्या करना है? प्लीज दवाई खा लो, हेल्दी हो जाओगे। देखो मैं पूरी बेईमानी करूंगा, मुझे कोई इसमें मुझे मत बोलना कि ईमानदार रहो, बस मुझे बता दो कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। कुछ नहीं, मंदिर में आओ, पूजा पाठ करो, ब्राह्मण को दान दो, गंगा में डुबकी लगाओ, चलो ठीक है, मेरी कंडीशन है, मैं अपने आप को नहीं बदलने वाला हूं, पर मुझे वो पूरा का पूरा पुण्य चाहिए जो ये ईमानदार आदमी कमाता है। तो हमने रास्ता खोल दिया मार्केटिंग के, कोई बात नहीं, वो बेवकूफ है, तपस्या करता है, अच्छा आचरण करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, तू कर जो बेईमानी करना है कर, हमारे पास आओ, गंगा में 3 डुबकी लगा, मंत्र हम बताएंगे कौन सा मंत्र बोल के डुबकी लगाओगे, खड़े हो जाओ बाहर बैठो, ब्राह्मणों को खिलाओ पिलाओ, मोटी दक्षिणा दो, फिर देखो कैसे पुण्य हम आपको दिलाते। तो पुण्य हमें चाहिए पैसे से, शॉर्टकट वे से। तो नए तीर्थों की परसेप्ट कंसेप्ट बना, ये जो सो कॉल्ड तीर्थ यात्रा है आजकल की, प्राचीन काल से तीर्थ यात्रा से बिल्कुल अलग है। आजकल की तीर्थ यात्रा है कि जिंदगी भर मुझे जो करना है करने दीजिए, मुझे रोकिए नहीं टोकिए नहीं, कुछ नहीं करना मुझे, तो इस सब के बावजूद मुझे चाहिए। अब आजकल 25-30 साल से बड़ा भारत में चल रहा है कि कांवड़िया वाले, हमारे सामने ही कभी एक आधा शुरू होते थे, कोई एक कांवड़ी का श्रावण के महीने में चलते थे, कोई 2-4, 10-20 लोग निकलते थे, कोई नदी से पानी लेकर किसी मंदिर तक जाते थे, ठीक है, कुछ बेवकूफ लोग करते थे। अब धीरे 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 अब ऐसे हो गया है कि आजकल श्रावण के महीने में अगर आप कहीं नॉर्थ इंडिया में हैं, कहीं भी हो, आप दिल्ली में हो, मेरठ में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, आपको गाड़ी चलाना मुश्किल है, लाखों लाखों लोग रोड पर ये पकड़ के घूम जा रहे, क्या करने, ये सब क्या कर रहे हो? बस ये जो 8-10 दिन चलेंगे तो उसमें सारे पाप धो जाएंगे, पुण्य आ जाएंगे, फिर तो हम जाकर अपनी पूरी नए सिरे से रिफ्रेश्ड होकर के फिर हम बेईमानी करेंगे, लोगों को टॉर्चर करेंगे, जो करना है करेंगे, उठपटांग हरकत करेंगे, अब रिफ्रेश्ड हो गए, सारा पाप गया, पूरे पुण्य कमा कमा कर जाएंगे, खर्च करेंगे। नहीं तो कांवड़ी यात्रा का क्या मतलब है, कौन सा उससे मिलता है आपको? देवियों से जनो, कोई भी शास्त्र में आप जाइए, जो पंडित आपको बताता है उसको प्लीज रिक्वेस्ट करिए, बता दीजिए कोई शास्त्र ऐसा है जहां लिखा हो कि तीर्थ का मतलब ऐसा होता है कि जहां जाकर डुबकी लगा देना,
या भ्रमण करके आ जाने से पुण्य मिलता है, नहीं मिलेगा देवियों सज्जनों।
हमारी जरूरत उसकी पूरी करने के लिए मार्केट है, दैट्स इट। एक मार्केट बनी हुई है क्योंकि लोगों को जरूरत है। तो सो कॉल्ड सैक्रेड प्लेसेस ऑन लैंड एंड वाटर आर नॉट तीर्थाज। सैक्रेड प्लेसेस, तीर्थ उसी को बोले जाते थे जहां ज्ञान के, योग के, आध्यात्मिकता के काम होते रहते हैं, आज भी होते हैं। जिनको आप तीर्थ कहते हैं आज भी वहां है। आप काशी जाएं, आज भी काशी भारतवर्ष के सबसे बड़ा ज्ञान क्षेत्र है। जिनको ज्ञान चाहिए जाते हैं। आज भी आप हरिद्वार जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, पुरी जाएं, आपको बहुत साधु सन्यासी संत महात्मा ज्ञानी लोग गुरुकुल बहुत मिलेंगे, बहुत जेन्युइन लोग मिलेंगे जो सचमुच आपको तीर्थ आने का फायदा दिलाएंगे, जो आपको कुछ ज्ञान देंगे, जो आपको फिजिकली आपका ट्रांसफॉर्म करेंगे, मेंटली आपका ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंटेलेक्चुअली आपको चेंज करेंगे, आपके मन को शांत करेंगे, फिजिकली आपको फिट करेंगे। बहुत है जो ज्ञान देते हैं, वो तीर्थ है। बाकी जाकर आश्रम में रहना, गंगा में डुबकी लगाना, ब्राह्मणों को खिलाना, ये मार्केट का हिस्सा है। आप कंज्यूमर हो, वो सेलर हैं। इट्स बिटवीन यू एंड देम। इट रिफ्यूट्स द बिलीफ। तो ये जो सिद्धांत जो प्राचीन काल के हमारे शास्त्रों में था, इसका यही मतलब था कि इट रिफ्यूट टू बिलीव दैट विजिट्स पेड टू द सैक्रेड प्लेसेस और बाथ इन सैक्रेड रिवर्स और टैंक्स आर मीन्स ऑफ सॉल्वेशन। नेवर। मुक्ति एक कठिन प्रक्रिया है, सैकड़ों शास्त्र उसमें है। यम नियम, अपने चरित्र को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, अपने आप को अच्छा बनाओ, मन को कॉन्सेंट्रेट करो, मेडिटेट करो, सिंगल पॉइंटेड करो, चरित्र को शुद्ध करो, अंदर की यात्रा करो, तो लंबी प्रोसेस से आपको मुक्ति मिलती है जन्म मरण के चक्र से। किसी नदी में डुबकी लगा देने से, खास तरह के प्रसाद के नाम पर लड्डू और फल खा देने से, किसी खास व्यक्ति को दान दे देने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। मोरल लाइफ एंड रिचुअल्स और सुपरस्टिशियंस इज द मीन्स ऑफ सॉल्वेशन। मेरा और आपका जो बिहेवियर है, जो कंडक्ट है, वो डिसाइड करता है कि मुझे सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप खुद देखिएगा, मुक्ति तो छोड़िए, मुक्ति का मतलब परमानंद, जहां आपको कोई दुख ना मिले। नॉर्मल जो जनरल सुख के लिए हम तरसते हैं, वो सुख आपको कब मिलता है और कैसे मिलता है? वो सुख सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आपके अपने एटीट्यूड से मिलता है। दुनिया कितने भी खूबसूरत हो, आपके पति या पत्नी कितने भी अच्छे हो, आपके बच्चे कितने भी अच्छे हो, पर अगर आपका एटीट्यूड अपने लिए दूसरों के लिए सही नहीं है, आप हमेशा रोते हुए आत्मा बनते मिलेंगे, दुखी आत्मा मिलेंगे। आपकी सर्कमस्टांसेस कितने भी नेगेटिव हो आपके लिए, पर अगर आपके एटीट्यूड सही है तो आपको सुख मिलेगा। सुख और दुख ये मेरे अपने स्टेट ऑफ माइंड है। दूसरों के कारण सुख नहीं मिलता है, दुख नहीं मिलता। और जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते कि वो लोग ठीक हो जाएंगे तो मुझे सुख मिलेगा, वो मेरे से ठीक से बात करेगा तो मुझे सुख मिलेगा, तो आप अपने आप को दूसरों के डिपेंडेंट बना देते हैं। और जो डिपेंडेंट आदमी होता है, जो स्लेव होता है, जो दूसरों की मर्जी से जीता है, उसके लाइफ में कभी सुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो दूसरों के भरोसे चलता है। दूसरे आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, उसकी मर्जी वो कैसे भी करेगा, तो आप हमेशा मतलब अगर वो थोड़ा सा चाबी घुमा लिया तो आप रोने लगोगे, चाबी इधर कर दिया अब हंसने लगोगे, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव करेगा तभी मैं खुश रह पाऊंगा, मेरी पत्नी ऐसी रहेगी तो मैं खुश रह पाऊंगा, मेरा पति ऐसा रहेगा तभी मैं खुश रहूंगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे तभी मैं खुश रहूंगा, मेरे पड़ोसी मेरे से ऐसे बिहेव करे तभी मुझे अच्छा लगता है, मैं जहां जाता हूं अगर वैसे करेंगे तभी अच्छा लगता है। तो लाइफ में आप कभी भी अच्छे आप खुशी नहीं मिल सकती है, कभी नहीं मिल सकती है। ध्यान रखिए, खुश सुख और दुख इट्स टोटली प्राइवेट एंड इट्स टोटली इंडिविजुअल। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, दोस्तों में मित्रों में देखिए, आपको मिलेंगे जिनकी लाइफ बहुत मिजरेबल है आपकी नजर से, पर वो अंदर से सुखी हैं। आपको वैसे भी अपने आस पड़ोस रिलेटिव फ्रेंड्स में मिलेंगे जिनके आपके कंपैरिजन उनके लाइफ में सब कुछ है, हरा भरा लाइफ है, सब कुछ है, पर आपको रोते हुए मिलेंगे, बड़े दुखी आत्मा मिलेंगे, दवाई खा के सोना पड़ता है, नींद की गोली खाकर सब कुछ। अगर ऐसा नहीं होता तो सारे गरीब लोग दुखी मिलते, सारे धनी लोग सुखी मिलते, सब कुछ है उनके पास। सारे पढ़े लिखे लोग सुखी होते, सारे अनपढ़ लोग दुखी होते, पर ऐसा कभी आपने देखा है? किसी अनपढ़ गरीब झोपड़ी में चले जाए और वो बड़े दुखी आत्मा होकर बैठा है? नहीं, 8 बजे बेड पर जाता है तो 8:30 तक उसको नींद आ जाती है। और हो सकता है आप 10 बजे जाते हैं, 1 बजे तक करवट बदलते रहते हो, सुखी तो तभी पता लगता है ना आपके। ऐसा नहीं होता है, ये आपके एटीट्यूड है, ये आपके अपने माइंडसेट है कि वो डिसाइड करता है कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं। अगर सुख दुख होना आपका अपना कर्मों से, अपने स्वभाव से, अपने मन से डिसाइड होता है, परम सुख कैसे दूसरों के कारण से होगा? नहीं हो सकता। धर्म पूरी तरह इंडिविजुअल होता है हमारी संस्कृति में, हिंदू धर्म में। ये ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकता, ये कम्युनिटी बेस्ड हो ही नहीं सकता। धर्म सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल है, मैं जो कर रहा हूं उसका फल मुझे मिलेगा, दूसरा क्या करता है उसके मेरे लिए कोई असर नहीं। इवन वो मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे माँ बाप हो, उनका कर्म फल मुझे नहीं मिलने वाला, मेरा कर्म फल उनको नहीं मिलने वाला। अगर कोई पत्नी के कहने पर बुरा काम करता है या पति के कहने पर बुरा काम करती है, वो स्टूपिड है, वो अपने लिए गड्ढा खोदती है या खोदता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, किसी बदमाश को पूछो, क्यों करते हो भाई, चोरी क्यों करते हो, रिश्वत क्यों लेते हो, गंदा काम क्या कर रहे हैं, परिवार पालना है, बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, पालने के लिए करना पड़ता है। और आप सब पढ़े लिखे हैं, आपने विश्वामित्र की कहानी पढ़ी होगी, सॉरी वाल्मीकि की कहानी सुनी होगी। वो बचपन में डाकू थे, जंगली थे, डाकू थे, लोगों को जो रास्ते में गुजरता था जंगल से उसको पकड़ते थे, मारते थे, काटते थे, उसके धन संपत्ति लूट लेते थे और उनका खून करता था। खून इसीलिए कि वो शहर में जाकर बता ना दे किसी को, मार डालता था, अपना परिवार पालता था। एक बार 6-7 ऋषि रास्ते से गुजर रहे थे, ऋषि लोग, उनको भी पकड़ लिया। ऋषि लोग बेचारे, उनके पास क्या है, कुछ नहीं है, साधु संत है, ज्यादा से ज्यादा कमंडल है। फिर उसने उनको पकड़ा, कमंडल तो छीन लिया और मारने की कोशिश की। ऋषियों ने कहा, बेटे सुनो, तू जो लेना है ले जाओ, मारते क्यों? तो अब ऋषि लोग थे, थोड़ा तो उनका प्रभाव पड़ता है, कोई आम आदमी होता तो सुनता भी नहीं, मार डालता, थोड़ा असर था उनकी वाणी पर। तो उसने कहा कि मैं क्या करूं, मुझे परिवार पालना होता है तो मैं मारता हूँ, पैसा लूटता हूँ, तो मारते क्यों? मारना इसलिए पड़ता है कि वो शहर में जाकर बता देंगे कि डाकू है, तो राजा सेना भेज के मारेंगे, तो मारना तो पड़ता है। ना तो परिवार के लिए ये सब करता है, इतनी हत्याएं करता है, इतने लोगों को मारता है, लूटता है, हत्याएं करता है, परिवार के लिए करता है तो कोई जरूरी है? बोले मैं गरीब आदमी हूं, क्या करूं, मुझे करना पड़ता है। चलो तुम गरीब हो, अपने बच्चे पालने के लिए, परिवार पालने के लिए तुम्हें करना पड़ता है, पर तुम्हें पता है ना ये सब पाप है, कितने गंदे काम है, आगे जाकर इसका फल तो तुम्हें ही मिलेगा ना, मुझे क्यों मिलेगा, भाई जिनके लिए करता हूं उनको भी मिलेगा, कभी पूछ के देखा है? पूछा तो नहीं है, कभी पूछ के आओ, जाओ घर, हम यही हम तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूछ के आओ। तो उसको लगा ऋषि लोग शायद मेरे साथ छल कर रहे हैं, तो उन्होंने सबको, सातों ऋषियों को बांधा पेड़ में, घर गया। घर गया तो आंगन में बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को बुलाया, बच्चों देखो ये तुम्हारे पास जो कपड़े हैं, ये जो खाना पीना है, ये जो खिलौने हैं, ये पता है कौन लाता है? कौन लाते हैं? मैं लाता हूँ। जी आप लाते हो, पर तुम्हें पता है मैं ये सब कैसे लाता हूँ? बच्चे हंसने लगे, तो कोई पिता थोड़े बच्चों से पूछता है कि मैं कैसे लाता हूँ, कैसे कमाता हूँ। बोला चुप, सुनो मैं कैसे लाता हूँ, मैं ये सब लाता हूँ, लोगों की खून करता हूँ, उनको लूटता हूँ, ये सब करके लाता हूँ। बच्चों ने कहा जी कितने गंदे हो पिताजी, ये सब काम करते हो? पिता ने कहा चुप, ये तुम्हारे लिए तो करता हूँ, तुम कहते हो गंदे हो, किसने कहा ये गंदे काम करने के लिए? सबके माँ बाप, थोड़े ही माँ बाप को लोगों को मार काट करके लाके बच्चे पालते हैं। उसको लगता है बच्चे बिगड़े हुए हैं। देखिए हर जमाने में ना सबको लगता है उनके बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, क्योंकि बच्चे सच बोलते हैं ना, तो जब बच्चे सच बोलते हैं, आज भी हम बोलते हैं बच्चे थोड़ा मुंह पर सच बोल दें तो लगता है बच्चे बिगड़ गए। ये हर जमाने की दस्तूर रहा है जी, बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए कहे जाते हैं, पर सचमुच बिगड़े हुए तो माँ बाप ही होते हैं, है ना। तो ये बिगड़े हुए बच्चे पत्नी के पास पहुंची, पूछा भाई तुम तो मेरी पत्नी हो, जन्म मरण की साथी हो, सात जन्म की साथी हो, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, आजकल की नहीं, सात जन्मों की साथी, अब तो एक जन्म मुश्किल हो जाता है। तो तुम तो बताओ, तुम्हें तो पता है कि मैं कैसे करके लाता हूँ, पर मैंने तुम्हें पूछा नहीं, तुम मेरे पाप के फल के साथी बनोगे कि नहीं? अब पत्नी बिचारी क्या बोले, बोले साथी बनना पड़े तो बन जाऊं, पर सचमुच थोड़े ही बन सकते, तुम्हारा कर्म तुम्हें ही मिलेगा, मेरा कर्म मुझे मिलेगा। बोले ज्यादा फिलोसफी मत झाड़ो, मैं समझ गया तेरे क्या भाव है। पिता माता के पास पहुंचा, बुजुर्ग पिता माता थे, उनकी सेवा करता था। बोले आप मेरे पिता माता हो, देखो मैं ये करके लाता हूँ और आपको पालता हूँ, आप बताइए आप मेरे कर्मों के साथी हो कि नहीं हो? पिता माता बोलने लगे देखो जो तो छोटा था, हम तुम्हारे माँ बाप थे, हम पालते थे, कभी तुम्हें कभी पूछा, कभी तुम्हें ये बताया, एहसान जताया कि हम ऐसे करके लाते हैं, ये करके लाते हैं? भाई तब तुम, हमारी जिम्मेदारी थी तो हम पालते थे, हम बुजुर्ग हो गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम पालते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, ये सब तुम्हारा काम है, तुम्हें मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं? रत्नाकर को सब चोट लगा, दौड़े दौड़े आया, ऋषियों के पैरों में गिर गया, बोला जिनके लिए पूरी जिंदगी में ये पाप करता रहा, कोई राजी नहीं है मेरे साथ काम बांटने के लिए। ऋषियों ने बोला उनका राजी होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कर्म तो तुम्हें ही मिलेगा, उनका कर्म फल उनको मिलेगा, वो चाहे हाँ भी बोल दे तो भी नहीं तुम्हारे कर्म से भागीदार बन सकते हैं। देवियों सज्जनों, हमारे कर्म से ही हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, हमारा मोक्ष भी हमारे कर्मों से होगा। और ऐसा कुछ नहीं कि आप कहीं डुबकी लगा दें, किसी को दान दे दें तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं होता है। तीर्थ जहां भी आपको ज्ञान मिले, आपके चरित्र में परिवर्तन आए, आपको कुछ आपके जीवन में आपके दुखों के दूर करने के लिए रास्ता खोले, वो तीर्थ है, न कि कहीं डुबकी लगाना, कहीं सर झुका करके गना, कहीं घूमकर आ जाने से कोई तीर्थ होता है। और एक छोटी सी बात करके समाप्त करेंगे, पुरुषार्थ बड़ा है, जो हम काम करते हैं वो बड़ा है, डेस्टिनी बनी है, वैसे ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ पीपल इसमें लड़ते, ये संघर्ष में पड़े हैं कि डेस्टिनी जो हमारा किस्मत है
वो बड़ी है या जो मैं काम कर रहा हूं वो बड़ा है। मेरे साथ जो हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी चीजें हो रही हैं जो मैं नहीं चाहता हूं, मैं नहीं करता हूं, पर मेरे साथ हो रही है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। कुछ लोग कहते नहीं, तुम कुछ भी कर लो, कठपुतली हो भगवान के, ऊपर वाले के, वो जैसे नचाएगा वैसे नाचोगे, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता है। कुछ एग्जाम्पल दिख जाता है। कुछ लोग कहते हुए मिलेंगे, ये डेस्टिनी फेस्टिनी यूजलेस है, बकवास है, अपने कर्मों से मेहनत करो, अपना हाथ जगन्नाथ है, मेहनत करो, तुम दुनिया में किसी भी दूरी तक जा सकते हो। जिन लोगों ने भी आगे बढ़ने की आगे बढ़े हैं, जो लोग आगे बढ़े हैं, वो सब डेस्टिनी के भरोसे नहीं बढ़े हैं, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से बढ़े हैं। असली बात क्या है, हम अगले बार चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा विषय है। पुरुषार्थ बड़ा या पुरुषार्थ मतलब मेहनत बड़ी है या अपना भाग्य बड़ा है। लाइन पढ़ के ही समाप्त करता हूं स्वामी जी के विचार। स्वामी जी लिखते हैं, एफर्ट आपका जो परिश्रम है इज अ सुपीरियर टू डेस्टिनी बिकॉज इट इज एफर्ट दैट डिटरमाइंस डेस्टिनी। ये यही एफर्ट है जो आपके पुराने भाग्य कर्म फलों को, भाग्य को चेंज कर सकता है और नए भाग्य बना सकता है। यही डेस्टिनी, आज का काम आपके अगले 2 साल के बाद आपकी डेस्टिनी का काम करेगा। एन एफर्ट विल मेड वेल मेड लीड्स टू सक्सेस, लैक ऑफ एफर्ट स्पॉइल्स एवरीथिंग। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसमें अमूमन प्रश्न रहता है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स भी है, जेन्युइन डाउट्स हैं। तो अगले बार हम इसकी चर्चा करेंगे, जिनको जानने की इच्छा है जरूर आइएगा। इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति शांति।